Şetelir. Şetelir. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी से। यूं तो आप हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, लेकिन एक काफी लंबे अरसे से कैलिफोर्निया में हैं। आप दर्पण चैनल की संस्थापिका हैं और बहुत कुछ कहती हैं किताबें यूट्यूब चैनल की संस्थापिका भी हैं। आचार्य महावीर द्विवेदी समिति में हैं, नियो हिंदू फाउंडेशन की संयोजक हैं और विश्व हिंदी ज्योति बोर्ड की सदस्य भी हैं। माध्यमिक विद्यालय में आप हिंदी की शिक्षिका हैं। आपका बहुत लंबा परिचय है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता उनसे ही उनके बारे में जानें। आप अनेक बार सम्मानित भी हो चुकी हैं, अनेक सम्मान हैं आपके, पुरस्कार हैं आपके, पर आज हम आपसे ही आपकी जुबानी कुछ सुनना चाहेंगे। तो मिलवाते हैं आपको श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी से।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज को सुनने वाले मेरे सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और प्रणाम। मैं कुछ बोलूं इससे पहले कल्पना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। हिंदी की यात्रा, अमेरिका में हिंदी पढ़ाने का सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव है। मैं अपना अनुभव यहाँ आज आपके साथ साझा करने में बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है मुझे साझा करने में। 20 साल पहले जब मैं अमेरिका आई तो अमेरिका के टेक्सास शहर में कुछ नॉन भारतीय, जो भारतीय नहीं थे, उन लोगों ने हिंदी पढ़ने की अपनी इच्छा मुझसे जताई और मैंने उन्हें हिंदी पढ़ाना प्रारंभ किया। थोड़ा सा कठिन था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने हिंदी में बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे सुनीता जी और बहुत से लोग और हिंदी पढ़ाते हैं। तो सुनीता जी ने मुझसे एक बार संपर्क किया, बच्चों के लिए नाटक वगैरह लिखवाया और वो फिर उसके बाद वो लगातार मुझसे संपर्क में रही और मेरे लिखे नाटक वहाँ बच्चे परफॉर्म करते रहे। वहाँ के बच्चों के लिए ही मैंने जो है छोटी छोटी रिडल्स यानी कि पहेलियाँ लिखी, जो मुझे अपने बचपन में मम्मी पूछा करती थी, दादी पूछा करती थी, तो उसी को सोच करके मैंने कुछ यहाँ के चीज़ों पे पहेलियाँ लिखी। तो उसमें एक पहेली का जैसे एक उदाहरण के रूप में देती हूँ। फ्रांस का उपहार हूँ, अमेरिका के गले का हार हूँ, मशाल और किताब लेकर किनारे पानी के खड़ी मैं यार हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसका आंसर है। तो इस तरह से मैंने यहाँ की चीज़ें, भारत की चीज़ें, इन सब को लेकर के मैंने छोटी छोटी पहेलियाँ बनाई। एक और देखिएगा, संगमरमर से बना प्यार की निशानी हूँ, दुनिया के अजूबों में एक कहानी हूँ, ताजमहल। इस तरह की बहुत सी चीज़ों को मैंने लिया। जैसे एक और है, सोने का बना पूजा का स्थान हूँ, सोने का बना पूजा का स्थान हूँ, गुरुओं का घर हूँ और देश की शान हूँ, गोल्डन टेम्पल। तो ये चीज़ें थी जिससे बच्चे अपने देश के बारे में भी सीखते थे और उन यहाँ की भाषा भी सीखते थे, हिंदी भी सीखते थे। इस तरह से सुनीता जी ने अपनी किताब निकाली जिसका एक सेगमेंट उन्होंने मेरी उसमें कहानियों को, कविताओं को और इस तरह चीज़ों को उन्होंने स्थान दिया, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वहाँ से जब मैं कैलिफोर्निया मूव हुई लॉस एंजलिस में, जहाँ मैं अभी रहती हूँ, यहाँ भी वो हिंदी पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। कभी मंदिर से जुड़कर, कभी अलग से पढ़ाकर, वो आज तक चल रहा है। एक बात जो यहाँ मैंने नोटिस की, जो अहिंदी भाषी प्रदेश है हमारे, वहाँ के बच्चों में, वहाँ के माता पिता चाहते थे उनके बच्चे हिंदी सीखें और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह दिखा हिंदी सीखने का, तो मैंने उनको हिंदी सिखाना जारी रखा। मैंने एक ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए कविता भी लिखी ताकि वो बच्चे यहाँ से उसको रिलेट कर सकें, जुड़ सकें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शेर, लायन, टाइगर, चीता, चिड़िया बर्ड कहलाती है, मोर, पिकॉक, जिराव, जीवरा, एलिफेंट, हाथी सबका साथी है। इस तरह से बहुत लंबी सी है, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ये ऐसे कविता बनाई। फिर जब बच्चे थोड़े एडवांस में आए, जब वो हिंदी पढ़ने लगे, तो मुझे लगा कि अगर कुछ सरल भाषा में कुछ निबंध होते तो मैं इन बच्चों को पढ़ाती और इससे वो यहाँ की चीज़ों के बारे को में भी जानते हिंदी में और भारत की चीज़ों को भी जानते हिंदी में। तो मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है आओ हिंदी पढ़ें। उस पर बहुत से विषयों पर, छोटे छोटे विषयों पर ऐसे हैं निबंध हैं, जैसे कि भारत का झंडा है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, या फिर हेलोवीन है, या फिर अमेरिका का झंडा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, क्रिसमस है, होली, दिवाली, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, विषय हैं, उन सब पे मैंने वो छोटे छोटे ऐसे लिखे बहुत सरल भाषा में, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सकें। उसके बाद मैंने उसमें प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, और कठिन शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे बच्चों को काफ़ी मदद मिली और वो कई स्कूलों में आज उसको पढ़ाया भी जा रहा है, जिससे लोगों को वो अच्छा लगा, मतलब बच्चों को भी और टीचर्स को भी। इसी तरह से जब मैं ये सब कार्यक्रम हमारा बच्चों के साथ चल रहा था, तो उनके हिसाब से ही मैंने कविताएं लिखी, उनके बहुत से कार्यक्रम भी करवाए, जैसे कि उनके डिबेट मतलब बोल चाल का जो कंपटीशन है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ज्ञान सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है कविताओं की, इस तरह की प्रतियोगिता भी करवाई हमने संस्थाओं के साथ जोड़ करके, जो कि बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, और उन सब ने मुझे इन सब चीज़ों के लिए सम्मानित भी किया। तो अच्छा तो लगता ही है जब आप कुछ कार्य करें और कुछ कोई उसको रिकग्नाइज करे, सम्मानित करे, तो अच्छा लगता है इस तरह से। और यहाँ पे ड्यूक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जहाँ पर मेरे लिखे हुए इंटरव्यू पढ़ा जाते हैं और कहानी मेरी वहाँ पे पढ़ाई जाती है। डिएंजा कॉलेज है सैन फ्रांसिस्को का, जहाँ पे नीलू गुप्ता जी प्रोफेसर हैं, वहाँ पर उनको हिंदी पढ़ाने के लिए मैं हेल्प करती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ वहाँ पर बच्चों को। बहुत आनंद आता है जब बच्चे कुछ सीखना चाहें, जानना चाहें, तो उनको पढ़ाने में। हिंदी का अगर हम देखें तो, अगर सोचें कि इसमें कठिनाई क्या है हिंदी को पढ़ाने में, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ तो कुछ भी पढ़ने में, आप मैथ भी पढ़ते हो हायर लेवल का तो उसमें भी आपको कठिनाई आती है, तो फिर आप कहीं से हेल्प लेते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदी के लिए कि माँ पिता तो इंटरेस्टेड हैं, मम्मी पापा को तो बहुत मन है कि बच्चे हिंदी पढ़ें, लेकिन साथ में बच्चों का भी उत्साह देखने को मिलता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं फोक डांस और बॉलीवुड डांस भी सिखाती हूँ, तो मैंने देखा कि जो हमारे हिंदी भाषी बच्चे हैं वो तो ठीक है, जो गैर हिंदी भाषी बच्चे हैं वो पूरी की पूरा गाना उनको याद है, वो गा के डांस कर रहे हैं, मायने नहीं पता बट गाना याद है लेकिन उनको। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं, और मैं ऐसा करती भी थी कि बच्चों को जब डांस सिखाती थी तो उस गाने का पहले उनको अंग्रेजी में अनुवाद करके बताती थी, ताकि उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन, वो भाव, और उसको समझ सके और उस फील के साथ वो नृत्य कर सके। यही सिलसिला चल रहा था, तो मैंने इसको अपने हिंदी क्लास में भी शामिल कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों से बोला कि आपका जो भी एक पसंदीदा हिंदी गाना है आप उसको लेके आइए और हम उस पर चर्चा करेंगे और उसको आपको उसके मायने बताएंगे। बच्चों को बहुत मज़ा आया, वो अपने अपने गाने जिस पे उन्होंने कहीं और भी डांस करते होंगे, नृत्य करते होंगे, वो लेके आए, फिर उस उनमें उसके भाव बताए गए, कठिन शब्दों के उसके इंग्लिश में मायने बताए गए। इससे क्या हुआ कि बच्चों को वो शब्द, उनकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हुई, खूब सारे शब्द उनके वोकैबुलरी में जुड़ते गए, तो हिंदी बोलने के लिए उनको उससे बहुत सहूलियत हुई। और गाना तो देखिए ऐसी चीज़ है जो बच्चों को याद ही हो जाता है, तो इसलिए वो वाला जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सफल हुआ। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरा ही है, लेकिन वो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया था जब बच्चों को मैं नृत्य सिखा रही थी। अब बस अगर हम परेशानी नहीं कहना चाहिए, समय की मांग कहना चाहिए, कि बच्चे जो है वो जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनके पर यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, कि हिंदी कहीं ना कहीं छूटने लगती है। लेकिन एक अच्छी बात जो मैंने नोटिस की, जब उनका थोड़ा सा पढ़ाई में विराम मिलता है, जैसे छुट्टियाँ होती हैं, कोई भी छुट्टी होती है, वो फिर से वापस आते हैं और हिंदी को अपना पढ़ना जारी रखते हैं। मैंने ये भी बच्चों को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी अपने बच्चों से और माता पिता से, कि मैं ये नहीं कहती कि आप एक घंटा बिठाओ बच्चों को और हिंदी एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ाओ, ऐसे मत करो। तो बच्चे उसे ना भागने लगेंगे। फिर क्या मैंने बोला उनको कि आप सिर्फ एक नियम बना लो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक या कभी भी दिन में थोड़ी देर हम हिंदी में ही बात करेंगे, चाहे वो डाइनिंग टेबल टॉक हो, आप उसमें भी बना सकते हो, या फैमिली में बैठे हो, या आप खाना बना रही हो तभी एक छोटा सा कोई समय निकालिए, ताकि बस आप उनकी प्रैक्टिस बनी रहे जब वो नहीं भी पढ़ रहे हिंदी तो। और ये बहुत काम किया ये तरीका। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बच्चों की हिंदी पढ़ने की जो वो थी कंटिन्यूटी थी, वो ब्रेक नहीं हुई, वो बोलते रहे बच्चे और वापस जब आए तो ये सीखते रहे। बस यही है कि जब बड़े होने के बाद, लेकिन रियंजा कॉलेज में अगर हम देखें तो उसे सारे बड़े बच्चे भी हिंदी पढ़ते हैं, तो ये सब देख के ऐसे तो लगता है ना कि हमारी हिंदी तो ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी एक कविता की दो लाइन थी कि मिटाना चाहो फिर भी मिटा ना सकोगे, मेरा समूल याद नहीं आ रही, मेरा समूल नाश ना होगा क्योंकि मैं दूब हूँ। जैसे दूब को आप जानते हैं ना, वो फिर से उगती रहती है। तो मुझे लगता है हिंदी हमारी कभी भी मतलब वो ख़त्म होने के कगार पे नहीं जाएगी और हमेशा इसी तरह से बढ़ती रहेगी आगे। कुछ बच्चों ने तो, मैं एक बात और साझा करना चाहती हूँ यहाँ पे, एक छोटी बच्ची थी, मैं मंदिर में थी, तो वो मेरे पास आके मुझे बोलती है कि आंटी विल यू टीच मी हिंदी। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा पढ़ाऊँगी, क्यों? बोली कि आफ्टर 6 मंथ मेरे माई ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टू कम हियर, दे आर गोइंग टू कम हियर एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू देम। आई सेड वाओ, अगर बच्चा ऐसा सोचता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे उसको बात करने के लिए, कम से कम इतनी हिंदी आनी चाहिए कि वो उनको समझ सके और वो बोल सके। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं दोस्तों, फिर कभी आपके साथ साझा करूँगी, आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। चलिए कार्यक्रम बहुत लंबा होता जा रहा है मेरे ख्याल से कल्पना जी, तो मैं एक छोटी सी अपनी अवधि में लिखी एक मेरा गीत है उसकी चंग पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रभु आई है बन के तोरे घर ललनवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। प्रभु आई है बन के तोरे घर ललनवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे घर वाले है विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। कमरा में तोरे सजी है पलना, पलना में तोरे खेली है ललना। कमरा में तोरे सजी है पलना, पलना में तोरे खेली है ललना। ऐसन दी है बाटे हो, ऐसन दी है बाटे रिसीवर दनवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे घर वाले है प्रभु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। तो ये बहुत लंबा संगीत है, फिर कभी सुनाऊंगी, कल्पना जी के इसी तरह कार्यक्रम में आऊंगी और फिर कभी सुनाऊंगी। और मैं एक अपनी गजल से आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी और कहूंगी कि मैंने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, मैंने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, मैंने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, तुमने दे दी मुझे रुसवाई जमाने के लिए, तुमने दे दी मुझे रुसवाई जमाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी इसी तरह से आपसे किसी और रेडियो कार्यक्रम में, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ, और इसी तरह से सुनते रहिए कल्पना जी को और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
रचना जी ने अपने बारे में जितना कुछ कहा, लगता है कि इसके आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय हमारे पास कम है और जितना भी उन्होंने अपने बारे में बताया उन्हें जानकर लगता है कि वो हिंदी से इतनी जुड़ी हैं कि उनके पास समय ही नहीं बचता है। और ऐसे ही व्यक्ति जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो वो हमारे बच्चों को, हमारे हिंदी के जो पाठक हैं उनको काफ़ी कुछ सिखा कर जाते हैं। अगली बार के लिए फिर हम किसी ऐसे ही व्यक्ति को लेकर के आपके सामने आएंगे। आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे।